सारी तफसील उस रिपोर्ट में लिखी होती है और फिर उसको पढ़कर बाज जगह मुझे खुशी होती है कि बड़ी हिकमत से उम्दा जवाब दिया है, बाज जगह कोफ्त होती है कि हराने की कोशिश हो रही है, दिल जीतने की कोशिश नहीं हो रही, सख्ती से काटने वाला जवाब दिया जा रहा है और अपनी तरफ से बड़े फख्र से मुझे बताया जा रहा है किस तरह हमने उसको लाजवाब किया। हालांकि लाजवाब करना मकसद ही नहीं है हमारा, हमारा मकसद यह है दिल जीते, खुद लाजवाब होकर दिल जीते। और यह भी एक हिकमत का मजमून है, बाज दफा लाजवाबी से भी दिल जीते जाते हैं। आप एक बात को बर्दाश्त कर लें, कर जाएं और उसका जवाब न दें और एक दर्द आमीज खामोशी इख्तियार करें तो उसके नतीजे में भी दिल जीते जाते हैं। अभी चंद दिन हुए अफ्रीका के एक मुल्क से इसी मजमून पर एक रिपोर्ट मिली कि हम किसी जगह गए, वहां जो उनका ईसाइयों का मुनाद था उसने बहुत बेहूदा जुबान इस्तेमाल की और सख्ती की और नापसंदीदा रवैया अख्तियार किया। उस पर हमने यही मुनासिब समझा कि सब्र से काम लें और मुकाबले पर सख्ती ना करें। चुनांचे हम सब्र के साथ उस दुख को बर्दाश्त करते हुए खामोश रहे। दूसरे दिन वो दिली माजरत के साथ इंतहाई शर्मिंदा हालत में पहुंचा, बार बार माफी मांगी और अर्ज किया कि आप दोबारा हमसे बात करें, दोबारा तब्दील करें और हम सुनने के लिए हाजिर हैं, बड़ी शराफत के साथ गुफ्तगू शुनीद होगी। ये इस मजमून का खत सिर्फ एक अफ्रीका से नहीं आता, मुख्तलिफ जगहों से मिलते हैं। बांग्लादेश से भी इस मजमून का खत मिला और भी कई ऐसे हैं जिनका मुझे अब नाम भी याद नहीं, मगर रोजमर्रा का तजुर्बा है कि जो अहमदी सब्र के साथ लिल्लही खामोशी इख्तियार करता है उसका जवाब ना देना उसके लिए ज्यादा दिल जीतने का मुझे बन जाता है, और जो ऐसा जवाब देना जानता है कि जिसके नतीजे में दिल जीते ही जाते हैं वो तो बहरहाल खुदा के फजल से एक आला मुकाम पर फायज है और उसके नतीजे में हर तबलीग, हर जिद्दोजहद, हर कोशिश के नतीजे के बाद अल्लाह ताला के फजल से उसकी झोली मीठे फलों से भरती रहती है। तो दावत इलाह करने का गुर सिखाना और जायजा लेना कि कोई इस मामले में क्या गलती कर रहा है, उसकी किस हद तक किस रंग में दुरुस्ती की जरूरत है, ये भी एक बहुत ही अहम काम है। बात बातें जो मैंने महसूस की हैं और बाद और बातें, उनमें से एक अहम बात यह है कि बाज लोग बाज खास लोगों से जब एक दफा टक्कर ले बैठते हैं और तबलीग का सिलसिला शुरू कर बैठते हैं तो ये सोचते ही नहीं कि उनके अंदर कोई कबूलियत का मादा काम है, और बाद ऐसी आते हैं जिनके नतीजे में आमतौर पर ऐसे लोगों को हदायत नहीं मिला करती, यानी जिद है, तासुब है, हदधर्मी है। और कुरान करीम ने हमें आगाजी में ये मुत्तले फरमा दिया कि ये किताब हुदल लिल मुत्तकीन है। यहां मुत्तकीन से मुराद इब्तदाई तारीफ के तौर पर यह है कि वो लोग जो सच्ची बात देखते हैं तो सच्ची बात को कबूल करने की सलाहियत पाते हैं, सलाहियत रखते हैं, यानी जिद और तासुब नहीं है। तो तकवा का पहला कदम यह है कि इंसान में यह सलाहियत मौजूद हो कि दिन को दिन कह सके और रात को रात कह सके। इसके लिए एक बड़ी तालीम की जरूरत नहीं है, यह इंसानी फितरत की एक तबी की कैफियत का नाम है। तो ऐसे लोग जिनको ये फितरी सच्चाई नसीब ना हो उनसे आप जितना चाहें सर टकराएं, उनको हदायत नहीं मिलेगी, सिवाय इसके कि अल्लाह ताला उस बुनियादी बीमारी को दूर फरमा दे। बस बजाय इसके कि आप अपना वक्त इन बीमारों पर जाया करते रहें इस उम्मीद पर कि अल्लाह ताला कादिर है शायद इनका दिल बदल दे, जो बीमार नहीं है उनकी तरफ क्यों नहीं तवज्जो करते। जब आपके पास वक्त काफी नहीं है, काम ज्यादा है, तो पहले उन चीजों पर हाथ डालें जिनको कब्जे में लेना आसान तर है, पहले मुश्किल चीजों पर हाथ डालेंगे तो नतीजा बहुत कम और बहुत देर से निकलेगा। इसलिए तबलीग के वक्त इस बात को समझाना भी जरूरी है कि एक आदमी को किस वजह से रिजेक्ट किए जाने को नजरअंदाज कर देना चाहिए और किस वजह से नहीं करना चाहिए, यह भी अपनी जात में एक गहरे गौर का मजमून है। मैं वजाहत से आपको समझाना चाहता हूं कि नजरअंदाज इस बात पर ना करें कि वो किसी समझने में देर कर रहा है या और वजूहात की वजह से उसके लिए कबूल करना मुश्किल है। अगर उसकी फितरत में सफाई है, अगर उसके अंदर झूठ और तासुब नहीं है, हां दूसरी कितनी ही बुराइयां क्यों ना हो, उसकी इस्लाह मुमकिन है। इसलिए बद कहकर किसी को नहीं छोड़ना, वरना जिस तरह हुसन सब में है बदियां भी सब में होती हैं। आपको बना बनाया फरिश्ता तो तबलीग के लिए नहीं मिलेगा, अगर बनाया बनाया फरिश्ता है तो फिर शायद वो आपको तबलीग शुरू करे, क्योंकि आप में उसकी निस्बत कम बुराइयां होंगी, ज्यादा बुराइयां होंगी। बस बुराइयों के नतीजे में नहीं छोड़ना। एक बात याद रखें, कुरान करीम ने जो तारीफ फरमाई है इब्तिदा में वो ये है कि जिसके अंदर सच्चाई की रोशनी नहीं है, जिसकी तबीयत में कजी है, उसकी आप इस्लाह नहीं कर सकते। जितना चाहें आप इस्लाह की कोशिश करें उनकी आप इस्लाह नहीं कर सकते। इसी मजमून को कुछ आयात के बाद मजीद खोलते हुए अल्लाह ताला फरमाता है, खत्म अल्लाह अला कुलूबहिम वाला समहिम वाला फारहिम रिशावतुम वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। इनकी अंदरूनी कजी इनकी सलाहियतों की राह में हायल हो गई है। सलाहियतें तो अल्लाह ताला ने हर एक को अता फरमाई हैं, कान भी हैं, लेकिन कानों पे पर्दे पड़ गए हैं, कान भारी हो गए हैं, बोझ पड़ गए हैं कानों के ऊपर। आंखें हैं लेकिन आंखों के ऊपर पर्दे पड़ गए हैं। दिल हैं मगर दिल अंधे हो चुके हैं। ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर मोहरें लगी हुई हैं। बस मोहर ज़दा आदमियों पर बेवजह लंबे वक्त जाया करना ये दुरुस्त नहीं है, आपके कीमती वक्त का ज़िया है। लेकिन इसके मुकाबले पर एक और बात से भी बहुत एहतियात बहुत लाजिम है कि ये कह दिया जाए कि ये सारा इलाका ही मोहर ज़दा है, इनमें हदायत कबूल करने का मादे कोई नहीं। ये जो आम फतवा देना है ये एक बहुत खतरनाक बात है। इसका मतलब है कि अपनी कमजोरियों को खुदा की तकदीर के सर पे थोपने की कोशिश कर रहे हैं। वह खुदा तआला ने सारी जमीनें ही बंजर पैदा की हैं, आप बेचारे क्या कर सकते हैं? जब जमीनों ने कबूल ही नहीं करना तो आपका क्या कसूर? इसलिए इस फतवे में जल्दी नहीं करनी चाहिए, लेकिन हिकमत और गहराई के साथ जायजा लेकर इनफरादी तौर पर यह फतवा दिया जा सकता है। और जिन लोगों में आप जिद और तासुब देखें उनको छोड़कर सही फितरत लोगों की तरफ मुतवज्जे हों। मुझे पाकिस्तान में पाकिस्तानी बना था हिंदुस्तान के जमाने में याद है, लाहौर में हमारे पास दोस्त थे बड़े, बहुत ही तबलीग का शौक रखने वाले। जब हम तालिबे इल्म हुआ करते थे सारी उम्र उन्होंने तबलीग की और सारी उम्र एक भी फल नहीं लगा। वजह यह है कि जो आदमी जिद्दी चुने हुए थे उनसे ही टकराते रहे। आज वो ये दलील लेके आया, कल ये दूसरी दलील लेके आए, सारे हर रोज हंगामे, हर रोज गुफ्तो शनीद बहसें और गर्म 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 बहसें, यहां तक के बाद लड़ाइयों तक भी नौबत पहुंच जाती थी। मगर वो उन दोस्तों के साथ आपस में इस तरह जुड़ चुके थे कि अलहदा नहीं हो सकते थे और सारी उम्र अपनी जाया कर दी। अगर उनको छोड़कर दूसरे लोगों की तरफ मुतवज्जे होते तो आसानी के साथ खुदा के फजल के साथ ऐसे सही फितरत मिल सकते थे। लेकिन क्यों ऐसा नहीं किया, यह सवाल है जिसको आपके लिए समझना जरूरी है। एक अनानियत की बहुत सी किस्में हैं, बाज किस्में दबी हुई शक्ल में, भेस बदली हुई शक्ल में मौजूद है। बाज दफा जिससे एक दफा दीनी गुफ्तगू में मुकाबला शुरू हो जाए, अगर आप उसके किसी सवाल का जवाब ना दें और ये कह दें कि जी मैं देख चुका तुम्हें, बस काफी हो गई,
मैं हार गया समझ लो, तो अगर आप में यह कहने की सलाहियत नहीं है और आप समझते हैं कि किसी मौके पर मैंने हार अपनी जात की हार कबूल ही नहीं करनी, तो आप ऐसे शख्स से फिर कभी पीछा नहीं छुड़ा सकते। एक तलक घूंट पड़ने के पीने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। एक मौके पर आपको यह कहना पड़ेगा, मियां तुम जीत गए, मैं हार गया, मेरे पास जवाब नहीं है, यानी तुम्हारी इन कजबैसियों का जवाब नहीं है, तुम मुझे हारा हुआ समझ लो, लेकिन खुदा के लिए मेरे पीछा छोड़ो। ये कह दे अगर कोई शख्स, तो बाज दफा उसकी मख्फी अनानियत कहती है कि लो जी तुम शिकस्त खा गए, तुम अपने आप को तुमने नीचा दिखा दिया, और ये वो रोक हायल हो जाती है उससे पीछा छुड़ाने में। चुनाचे जिन साहेब बहन का मैं जिक्र कर रहा हूं, एक से जायद हैं जो मेरे जहन में हैं, बाज फौत हो गए, बाज जिंदा भी हैं, उनकी ये आदत उनकी तबलीग के मौसर होने की राह में हमेशा रोक रही, और वो समझते थे कि हमारे लिए जवाब देना जरूरी है, और अच्छे जवाब लेके आते थे, मगर जिसने कबूल ही नहीं करना उसको अच्छे या बुरे जवाब से कोई बहस नहीं है, उसने बहरहाल कबूल नहीं करना। तो ये भी देखना पड़ेगा कि कोई शख्स चंद खास किस्म के लोगों के साथ मुसलसल सर तो नहीं टकरा रहा। मैं जब जर्मनी गया तो वहां यहोवा विटनेसेस वाले बड़े सरगर्म अमल देखे, अफ्रीका में भी आजकल बड़ा काम कर रहे हैं। बाज दोस्तों से जब फैमिली मुलाकात हुई और तबलीग की बात हुई तो उन्होंने बताया कि जी हम तबलीग कर रहे हैं मगर कोई असर नहीं होता। जब मजीद पता किया तो मालूम हुआ कि यहोवा विटनेसेस वालों से वो अपना सर खपा रहे हैं, और ये वो लोग हैं जो तमाम ईसाइयों में सबसे ज्यादा मुतसब हैं और रिजिड हैं। उनकी अकली हालत ऐसी है कि उनके अंदर वो बदलने की सलाहियत नहीं है, और एक खास किस्म का दिमाग ही है जो यहोवा विटनेस बनते हैं। यहोवा विटनेस के लिए जो सलाहियतें चाहिए उनमें दिमाग की क्रूकेडनेस जरूरी है और कुछ तंगी नजर की जरूरी है, उसके बगैर अच्छा यहोवा विटनेस बन ही नहीं सकता। तो अक्सर इल्ला माशाल्लाह बाज इत्तेफाकन कहीं निकल आते हैं ऐसे जो यहोवा विटनेस बनने के अहल नहीं होते फिर भी बन जाते हैं, और एक एमजी उनको उन ठोकरों से बचा भी लेता है। मसलन जापान से मुझे एक खत मिला जिसमें पता लगा कि एक यहोवा विटनेस वाला इतना सही फितरत था कि चंद बातों में ही उसका दिल यहोवा विटनेस से हटकर इस्लाम की तरफ मायल हो गया, लेकिन वो दूर की कौमें हैं, उनको इतना ज्यादा ईसाइयत का गहराई से इल्म नहीं और उतना गहराई से ताल्लुक नहीं है। मगर बाद इनके ईसाइयों में तब्दीली फिरके ऐसे हैं जो दिमाग की कमजोरी और सलाहियतों के मुंजमिद होने की वजह से मजहबी बने हुए हैं। मौलवियत के लिए बेवकूफी का होना जरूरी है, और जहां बेवकूफी जिद में बदल जाए वहां आप जो चाहे करें आप कुछ नहीं करो, कभी कामयाब नहीं हो सकते। तो उनको मैंने समझाया, मैंने कहा तुम क्यों अपना वक्त जाया कर रहे हो, और अगर यहोवा विटनेस वालों से बात करनी है तो कम से कम पता तो करो कि इनको किस तरह गले से उतारा जा सकता है, या वो सीधे हों या तुम्हें मुंह दिखाने के लायक न रहे, उनसे गुफ्तगू का तर्ज और होनी चाहिए। मुझसे एक दफा इस किस्म के एक दोस्त मेरे तशरीफ लाई थी, एक खातिन गुफ्तगू करने लगी, मैंने कहा तो मुझे पहले यह बताओ कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत मरियम और खुदा के ताल्लुकात क्या हैं। वो बेटा है वाकयातन हाजिर, बिल्कुल पक्का, इसमें तो शक की कोई सवाल ही नहीं, बेटा। मैंने कहा फिर हजरत मरियम मां हुई, तभी बात है मां है, खुदा बाप है, तो हजरत मरियम हजरत खुदा की बीवी कहलाई ना फिर। अगर वो निकाह नहीं हुआ तो फिर ये रिश्ता जो है वो बड़ा गंदा रिश्ता बनता है, हम सोच भी नहीं सकते कि अल्लाह ताला का अपनी मखलूक से कोई गंदा रिश्ता कायम हो। और अगर निकाह हुआ है यानी आसमान पे ही चुकी हुआ हो, जरूरी नहीं कि दुनिया में पढ़ाया गया हो, तो फिर मनकूहा बीवी बन गई है। अब मुझे अगला मसला ये समझाओ कि जब यूसुफ ने जार से शादी की तो क्या खुदा ने तलाक दी थी या दो खामन किए हैं, एक खामन खुदा था जिससे मसीह पैदा हुए और एक यूसुफ नजार था जिससे और बहुत से बच्चे पैदा हुए, तो ये मसला हल करो। अब ऐसे मसाइल जो अकली नुक्ता निगाह से पेश किए जाएं इनका कोई जवाब नहीं है, अब आजमा के देख लें। ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے گفتگو کرنی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، دل آزاری کی خاطر نہیں، سمجھانے کی خاطر یہ اشکال ان کے سامنے رکھے جا سکتے ہیں۔ ایک دو کے ساتھ آپ اس طرح کی عقلی دلائل سے گفتگو کریں تو آپ ان کو بلائیں گے بھی تو آپ کے پاس نہیں آئیں گے، جہاں اس میدان میں وہ آپ کو کھینچ لائیں، یعنی بائبل کے بعض ایسے بیانات جن کو نہ وہ خود سمجھتے ہیں نہ عام انسان کو سمجھنے کی استطاعت ہے، گہرے مضمون سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ جو چاہیں کریں، آپ کو بھی ان کی اصلاح نہیں کر سکیں گے، ہمیشہ وہ سمجھیں گے کہ ابھی یہ ہمارا شکار ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی تفصیلی چھان بین کرنی پڑے گی سیکٹری تبلیغ کو اور اس کے ساتھیوں کو کہ جن لوگوں سے تبلیغ کر رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں، ان کے رد عمل کیا ہیں، یہ زمین جیت رہے ہیں یا خود ابہام کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بڑا وسیع مضمون ہے اور بڑے وسیع وقت کا تقاضا کرتا ہے، بہت سے ایسے تربیت یافتہ مددگاروں کی ضرورت ہے، بہت دعاؤں کی ضرورت ہے، لیکن چونکہ وقت کافی زیادہ ہو چکا ہے، میں گھڑی پہ نظر ذرا دیر میں ڈالی ہے، اس لیے اس مضمون کو میں یہاں ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ خطبے سے دوبارہ اس مضمون کو شروع کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف سمجھنے کی توفیق نہ بخشے بلکہ جو ہم سمجھیں اس کو عمل میں ڈھالنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔